का था, रूह वही, रूप नया।
शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना कि सोहराब शोलागढ़ के लिए निकल पड़ा था। वहीं सार्जेंट सलीम और श्रेया रास्ता खोजते खोजते एक हाईवे तक पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने शोलागढ़ का माइलस्टोन देखा। पीछे से किसी ने सार्जेंट सलीम को आवाज लगाई और ये आवाज थी कैप्टन किशन की। आखिर वो शोलागढ़ के हाईवे के रास्ते पर क्या कर रहा था और उसने इतनी रात को सार्जेंट सलीम को कैसे पहचान लिया? क्या शयाली की मौत की गुत्थी का संबंध कैप्टन किशन से है? जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ का ये भाग। ये आवाज कैप्टन किशन की थी। कार की पिछली सीट से कैप्टन किशन ने उतरते हुए पूछा, यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को, और ये जंगलियों का सा लिबास क्यों पहन रखा है? मैं शिकार खेलने गया था, वहां जंगलियों ने मुझे अपना राजा बना लिया, आने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से भाग कर आया हूं, सार्जेंट सलीम ने पूरी गंभीरता से कहा। अचानक कैप्टन किशन की नजर श्रेया पर पड़ गई। उसने धीरे से कहा, हो तो आप भी हैं। उसने ये बात इतने धीरे से कही कि सार्जेंट सलीम सुन नहीं सका। कहां जाना है, कैप्टन किशन ने पूछा। जहां आप ले चले, सार्जेंट सलीम ने अधिकार पूर्ण ढंग से कहा। मैं तो शोलागढ़ जा रहा हूं, कैप्टन किशन ने जवाब दिया। हमें भी ले चलिए, सार्जेंट सलीम ने बेहिचक कहा। आप लोग पीछे की सीट पर बैठ जाइए, मैं आगे बैठ जाता हूं, कैप्टन किशन आगे की सीट पर बैठते हुए बोला। सलीम ने श्रेया को सहारा देकर पीछे की सीट पर बैठा दिया और खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। कार एक झटके से आगे बढ़ गई। कैप्टन किशन और सार्जेंट सलीम में जो भी बातें हुई थी, श्रेया कुछ भी नहीं सुन सकी थी। वो कैप्टन किशन को पहचान भी नहीं पाई थी, क्योंकि थकान और कमजोरी की वजह से वो नीम बेहोशी की हालत में थी। कार में बैठते ही वो तुरंत सो गई। आप शोलागढ़ क्यों जा रहे हैं, सार्जेंट सलीम ने पूछा। अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए, कैप्टन किशन ने जवाब दिया। आपने तो कहा था कि शयाली के बिना फिल्म डिब्बा बंद हो गई है। फिल्म बंद करने से मेरा काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए उसे पूरी करना ही पड़ेगा, सार्जेंट सलीम ने फिर सवाल किया। शयाली वाला हिस्सा पूरा हो गया है क्या फिल्म का? उसे जाने क्यों दिलचस्पी पैदा हो गई थी? ये तो शैलेश जी अलंकार ही बताएंगे, कैप्टन किशन ने टालने वाले लहजे में कहा। मुझे कपड़े तो मिल जाएंगे ना वहां, सलीम ने बात बदलते हुए कहा। उसने महसूस कर लिया था कि कैप्टन किशन फिल्म और शयाली पर बात नहीं करना चाहता है। कैप्टन किशन ने जवाब दिया, जरूर मिल जाएंगे, लेकिन नए कपड़े मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। अरे जैसे भी हो, मुझे कौन सा दूल्हा बनना है, सलीम ने कहा। इसके बाद खामोशी छा गई। सलीम को बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन वो सोना नहीं चाहता था। इसकी वजह यह थी कि वो कैप्टन किशन की तरफ से मुतमईन नहीं था। कुछ देर बाद कैप्टन किशन ने उससे पूछा, आप मेरे होटल में रहना पसंद करेंगे या फिर शूटिंग साइट वाली कोठी में? मैं समझा नहीं, सार्जेंट सलीम ने जवाब दिया। मैं तो होटल में ठहरूंगा, लेकिन आपका वहां इस हालत में जाना मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि हम पहले शूटिंग साइट पर ही चलें, वहां आपको कपड़े दिलाता हूं, उसके बाद आप चाहें तो कोठी के ही किसी बेडरूम में सो रहिएगा या फिर मेरे साथ होटल चलिएगा, वहां कई कमरे बुक हैं। यही सही रहेगा, सलीम ने कहा। कैप्टन किशन ने ड्राइवर को समझाते हुए कहा, पहले कोठी पर ही ले लो। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़ी सी कोठी के सामने लॉन में खड़ी थी। ड्राइवर ने उतरकर पहले कैप्टन किशन की तरफ का गेट खोला और उसके बाद सार्जेंट सलीम की तरफ का गेट खोल दिया। सलीम कार से उतर आया। वो कोठी को बड़े ध्यान से देख रहा था। ये तकरीबन 500 मीटर एरिया में फैली हुई बहुत बड़ी कोठी थी। आधे हिस्से में कोठी बनी थी और आधे हिस्से में उसका लॉन फैला हुआ था। लॉन में जगह जगह पुराने अंदाज के लोहे के खंभों पर लैंप जगमगा रहे थे। लॉन में एक तरफ कई सारी कुर्सियां और बड़ी सी मेज रखी हुई थी। पास ही फव्वारा चल रहा था। लॉन को मेहंदी की बाड़ से दो हिस्सों में बांटा गया था, हालांकि बीच बीच में दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए रास्ता भी था। हर तरफ लाइट जगमगा रही थी, लेकिन इसके बावजूद पूरी कोठी रहस्यमय लग रही थी। सर्जेंट सलीम ने कोठी और लॉन का जायजा लेने के बाद कहा, शानदार, फिल्म की शूटिंग इसी कोठी में होनी है, कैप्टन किशन ने उसके करीब जाते हुए कहा। कब से होगी शूटिंग?
कल रात से। यहाँ एक वो भूतिया मंजर शूट किया जाना है, कैप्टन किशन ने कहा। आइए उधर बैठते हैं।
मेरे ख्याल से इन्हें अभी कार में ही सोने देते हैं, उसने श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके बाद उसने ड्राइवर से कहा, आप यहीं रुकिए और इनका ख्याल रखिएगा। कैप्टन किशन उसे लेकर लॉन में पड़ी कुर्सियों पर आकर बैठ गया। इसके बाद वो किसी का नंबर डायल करने लगा। कुछ देर बाद उधर से फोन रिसीव होते ही उसने फोन पिक करने वाले को लॉन में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद ही एक नौकर भागा हुआ चला आ रहा था। उसने आते ही कैप्टन किशन को सलाम किया। अचानक उसकी नजर सर्जेंट सलीम पर पड़ी तो वहीं ठहर कर रह गई। वो बड़ी अजीब नजरों से सलीम को देख रहा था। उसको इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर सलीम गुस्से से भर गया। उसका मन हो रहा था कि उसकी गर्दन मरोड़ दे।
साहब के लिए कपड़ों का इंतजाम करो, नए मिल जाएं तो बेहतर है,
कैप्टन किशन ने नौकर से डपटने के से अंदाज में कहा। उसे भी सलीम को इस तरह देखा जाना अच्छा नहीं लगा था। नौकर जाने लगा तो कैप्टन किशन ने उसे रोकते हुए कहा,
रसोइये से कहो नाश्ता तैयार करे और साथ में कॉफी भी, सब कुछ बहुत जल्दी होना चाहिए।
ये कस्बाई इलाका है, यहाँ के उस छोटे से होटल में इस वक्त नाश्ता मिल पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं। आपको भूख भी लगी होगी?
भूख तो यकीनन लगी है,
साजन सलीम ने ईमानदाराना अंदाज में जवाब दिया। अगर भूख ज्यादा हो तो पराठे बनवा देते हैं, कैप्टन किशन ने पूछा।
नहीं, नाश्ता ही काफी होगा।
आपके उन साथी को भी तो कपड़े चाहिए होंगे, कैप्टन किशन ने सर्जेंट सलीम से पूछा।
हाँ मंगा ही लीजिए, हालांकि जंगल का राजा मैं ही बना था, वो तो पूरे कपड़ों में है,
सलीम की आवाज में गंभीरता थी। उसकी इस बात पर कैप्टन किशन ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। तभी नौकर सलीम के लिए कुर्ता और पाजामा लेकर आ गया। उसने कपड़ों को सामने पड़ी बड़ी सी मेज पर रख दिया।
एक लेडीज सूट भी चाहिए, कैप्टन किशन ने उसे कहा। नौकर फिर चला गया।
मेरे ख्याल से मैं अपनी साथी को भी यहीं ले आता हूँ, सलीम ने कहा और वो उठकर कार की तरफ चला गया। उसने कार का दरवाजा खोलकर श्रेया को जगा दिया।
हम कहाँ आ गए हैं,
उसने जागते ही सलीम से पूछा। बाहर आओ बताता हूँ, श्रेया बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाई। सर्जेंट सलीम उसे सहारा देकर कुर्सियों की तरफ ले जाने लगा। श्रेया लंगड़ा रही थी। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी नजरें कैप्टन किशन से मिली। उसे देखते ही श्रेया का चेहरा पीला पड़ गया। कैप्टन किशन के चेहरे पर भी एक रंग आकर गुजर गया। सलीम ने श्रेया को एक कुर्सी पर बैठा दिया। इतनी देर में रसोईया नाश्ता और कॉफी लेकर आ गया। नाश्ते में भुने हुए काजू और कुछ कुकीज थे। वो नाश्ता सजाकर चला गया।
आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं अभी आता हूँ,
कैप्टन किशन ने उठते हुए कहा।
मैंने पूछा था आपसे कि ये कौन सी जगह है,
कैप्टन किशन के जाते ही श्रेया ने फिर सवाल किया। हमें कैप्टन किशन ने अपनी कार में लिफ्ट दी है, वो हमें इस कोठी में ले आए। अभी नाश्ता करो फिर तय करते हैं कि आगे क्या करना है, सर्जेंट सलीम ने कहा और कॉफी पीने लगा।
चीनी कितनी लोगी?
जितनी मर्जी हो डाल दो, श्रेया ने गुस्से में कहा। जाने क्यों उसका मूड उखड़ गया था। सर्जेंट सलीम ने उसके गुस्से को नोटिस नहीं किया। उसे कॉफी देने के बाद उसने अपने लिए कॉफी बनाई और मजे से सिप लेने लगा। वो पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रहा था। नौकर श्रेया के लिए भी कपड़े लेकर आ गया और कपड़े रख कर कुछ दूरी पर चुपचाप खड़ा हो गया। सर्जेंट सलीम ने कॉफी खत्म करने के बाद अपने लिए एक और कॉफी बना ली। कैप्टन किशन वापस आ गया था। सर्जेंट सलीम की कॉफी खत्म करने के बाद कैप्टन किशन ने कहा,
आप लोग पहले कपड़े चेंज कर लीजिए फिर होटल चलते हैं।
मेरे ख्याल से रात का काफी हिस्सा तो गुजर चुका है,
अगर हमें यहीं कोई रूम मिल जाता तो हम कुछ वक्त यहीं आराम करना चाहेंगे, साजन सलीम ने कहा। हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कैप्टन किशन ने कहा। इसके बाद उसने पास खड़े नौकर को बुलाकर कहा, साहब को मेरा वाला रूम दे दो। ओके कैप्टन साहब, थैंक यू, सलीम ने कहा। अरे माय प्लेजर। तीनों ही अपनी सीट पर से उठ गए। कैप्टन किशन अपनी कार की तरफ बढ़ गया और सलीम और श्रेया नौकर के साथ चल दिए। नौकर ने सलीम और श्रेया के कपड़े उठा लिए थे। नौकर उन्हें लेकर बैठक में आ गया। बैठक क्या था, पूरा हॉल था। उसके दोनों किनारों से ऊपर की तरफ सीढ़ियां गई हुई थी। नौकर के साथ साजन सलीम और श्रेया सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो एक चौकोर से कॉरिडोर में आ गए। उसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। सामने की तरफ एक बड़ा सा ओपन एरिया भी नजर आ रहा था। वहां लगी फुलवारी से फूलों की ताजा महक उन तक भी आ रही थी। नौकर ने आगे बढ़कर बाईं तरफ के पहले कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से किसी भूतिया फिल्म की चर्र की आवाज आई। श्रेया को यह सब काफी अजीब लग रहा था। नौकर ने अंदर जाकर लाइट जला दी। कई सारी ट्यूबलाइट्स के साथ ही एक बड़ा सा झूमर जल उठा। लाइट जलाने के बाद नौकर ने उन दोनों को अंदर बुला लिया। साजन सलीम और श्रेया अंदर पहुंच गए। नौकर बेड पर दोनों के कपड़े रखकर चला गया। उसके जाते ही श्रेया ने बहुत जोर का ठहाका लगाया। साजन सलीम चौंक कर उसे देखने लगा। इंस्पेक्टर सोहराब पैदल ही सड़क पर चला जा रहा था। उसके पैरों में हल्की सी भचक थी। उसने दाहिना हाथ जेब में डाल रखा था, उसमें माउजर पड़ी हुई थी और उसकी मूठ पर सोहराब की ग्रिप थी। जरूरत पड़ने पर वो सेकंडों में रिवॉल्वर निकालकर फायर कर सकता था। चारों तरफ रात की स्याही फैली हुई थी। चांद डूब चुका था और तारों की रोशनी में पहाड़ किसी देव की तरह खड़े हुए नजर आ रहे थे। एक तरफ दूर तक पहाड़ियों का सिलसिला था और दूसरी तरफ घना जंगल था। इनके बीच शैतान की आंत की तरह काली सड़क दूर तक नजर आ रही थी। कैप्टन सोहराब इससे पहले भी शोलागढ़ आ चुका था, लेकिन तब वो ट्रेन से आया था। यहाँ के छोटे से स्टेशन पर उतरकर वो टैक्सी से गीतमपुर रवाना हो गया था। रास्ते में उस पर हमला भी हुआ था। इंस्पेक्टर सोहराब ने आधा सफर तय कर लिया था। उसने जेब से बीड़ी निकाली और रुककर माचिस से उसे जलाने लगा। माचिस की रोशनी में उसे कुछ दूर पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। वो पहाड़ों की तरफ देख रहा था। इंस्पेक्टर सोहराब ने पूरे इत्मीनान से बीड़ी जलाई और दो तीन कश लेने के बाद टहलते हुए उस आदमी के करीब पहुंच गया। उस आदमी ने पैरों की आहट पर पलट कर सोहराब की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त सोहराब ने बीड़ी का कश लिया। इसकी वजह से हल्की सी रोशनी हुई और उसमें सोहराब उस आदमी का चेहरा देखकर बुरी तरह चौंक गया। इंस्पेक्टर सोहराब के सामने शैलेश जी अलंकार खड़ा पलकें झपका रहा था। ये शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर फिल्म का राइटर और डायरेक्टर था। उसे वहां पाकर इंस्पेक्टर सोहराब आश्चर्य में डूब गया। आखिर वो इतनी रात गए यहां क्या कर रहा है? सोहराब ने हड़बड़ाकर मुजाहरा करते हुए मुंह में लगी बीड़ी फेंक दी और दोनों हाथ जोड़कर कहा, साहेब नमस्ते। सोहराब ने आवाज को बदलते हुए कहा, कौन हो तुम? शैलेश ने अपनी पतली आवाज को भारी बनाते हुए कहा, साहेब हम जरूरतमंद हैं, हमें मोहन बाबू ने आपके पास भेजा है, रुकिए आपको चिट्ठी दिखाते हैं। सोहराब ने सारी बातें एक ही सांस में कह डाली और जेब से चिट्ठी तलाशने का अभिनय करने लगा। उसकी बातचीत का अंदाज भी थोड़ा बदला सा था। कौन मोहन बाबू? शैलेश ने पूछा और फिर तुरंत ही कहा, अरे चिट्ठी छोड़ो, मैं अंधेरे में चिट्ठी कैसे पढ़ पाऊंगा, तुम अपना काम बताओ।
साहेब हम बेरोजगार हैं, मोहन बाबू कहे थे कि आप पूटिंग करते हैं, आप कहीं ना कहीं हमें काम पे लगा दो, हम पांचवी तक पढ़े भी हैं।
सोहराब की आवाज में जरूरतमंदों वाला विनय और नरमी थी।
पूटिंग?
शैलेश ने चौंकते हुए कहा, फिर हंसने लगा,
हो तुम शूटिंग कहना चाह रहे हो?
जी साहब वही वही जो आपने कहा, सोहराब ने जल्दी से जवाब दिया।
आओ वापस चलते हैं,
शैलेश ने कहा। दोनों आगे बढ़ गए। सोहराब को शैलेश जी अलंकार की सहजता आश्चर्य में डाले हुए थी। वो जब भी कोठी पर आया था तो उसने बहुत रूखेपन का प्रदर्शन किया था। इसके उल्टे आज उसका अंदाज दोस्ताना था। कहीं ये मोहन बाबू के नाम का तो असर नहीं है?
हमारी मुलाकात तो पहली बार हो रही है, तुमने मुझे पहचाना कैसे? और फिर यहाँ तो अंधेरा भी है, शैलेश ने आश्चर्य से पूछा।
मोहन बाबू ने हमें आपकी तस्वीर दिखाई थी ना, और अभी जब हम बीड़ी पी रहे थे तो आपका चेहरा देख लिए थे।
समझदार आदमी हो, शैलेश ने कहा, फिर तुरंत ही आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम इतनी रात को पैदल कहाँ से आ रहे हो?
मत पूछिए साहब, बहुत बुरा सफर रहा। शाम 4 बजे शहर से चले थे, एक ट्रक इधर आ रहा था, उसी पे लद लिए। किराया भी कम था और सोचा कि आराम से पहुंचा देगा, लेकिन बीच में ट्रक खराब हुई गवा। इतनी रात को किसी दूसरी गाड़ी से मदद भी न मिली तो पैदल ही चल पड़े। वैसे भी साहेब, वहां ट्रक के पास खड़े होने से कोई फायदा तो था नहीं।
सोहराब ने अपनी पूरी फर्जी रुदाद उसे पूरे यकीन के साथ सुना दी।
तुमने मुझसे मिलने के लिए काफी मेहनत की है, मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा, शैलेश ने कहा।
साहेब इतनी रात को आप यहाँ? सोहराब ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी कि कहीं शैलेश को ये सवाल नाराज ना कर दे।
मैं सुबह 5 बजे पैदल टहलने निकलता हूँ, आज 2 घंटे पहले आ गया था। रात के अंधेरे में इस इलाके की लोकेशन देखना चाह रहा था, सोच रहा हूँ कि फिल्म का कुछ हिस्सा यहाँ भी शूट करो, शैलेश ने कहा।
सही सोचे हैं साहब, बहुत अच्छी जगह है, एकदम बढ़िया। रात में ये सब पहाड़ तो गजबाई भयानक लगते हैं।
तुम आदमी बढ़िया हो, कितना पढ़े लिखे हो?
5वीं पास है साहब, आगे की पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसके वजह से पढ़ाई छूट गई। हमारे पास साइकिल थी नहीं ना।
सोहराब ने झट से अपनी बात उसके सामने रख दी।
पढ़े लिखे होते मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लेता, मेरा असिस्टेंट तो अव्वल दर्जे का गधा है, शैलेश ने कहा।
कुछ देर बाद ही दोनों एक कोठी के सामने खड़े थे। शैलेश ने फोन पर एक नौकर को बुलाया। नौकर के आने के बाद उसने सोहराब के लिए 2 चादर देने को कहा। नौकर थोड़ी देर में ही चादर लेकर लौटा।
चादर इन्हें दे दो और इनका ख्याल रखना, ये हमारे साथ काम करेंगे, शैलेश ने नौकर से कहा। ये पहाड़ी इलाका है, गर्मी के मौसम में भी यहाँ रात को ठंड पड़ती है, एक चादर बिछा लो और दूसरी ओढ़ लेना, शाम को मुलाकात होगी, शैलेश ने सोहराब से कहा। उसके बाद वो जाने के लिए पलट पड़ा, लेकिन फिर तुरंत ही लौटकर पूछा, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं अब तक।
साहेब हेतराम।
बहुत बुरा नाम है, इसे बदलो, ये कहता हुआ शैलेश जी अलंकार पैदल ही अपने होटल की तरफ रवाना हो गया।
अभी रात का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, सोहराब ने चादर को वहीं एक कोने में डाल दिया और कोठी के पीछे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन किशन सलीम को इस रूप में श्रेया के साथ पाकर उलझन में पड़ गया था। उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो बेवजह सलीम को यहां ढो लाया। अच्छा भला शूटिंग करने निकला था, अब ये नई मुसीबत, अब इनका अलग ख्याल रखो, सरकारी मेहमान जो ठहरे, जाने कब तक पड़े रहेंगे हरामखोरी के लिए। होटल के कमरे में टहलते हुए कैप्टन किशन यही सोच रहा था। उसने सोने का इरादा मुलतवी कर दिया। फैसला किया कि सुबह ही सलीम और श्रेया को यहां से रवाना कर देगा, भले अपनी कार से भिजवाना पड़े। वो सोफे पर बैठ गया और होटल के रिसेप्शन का नंबर डायल करने लगा। उधर से हेलो की आवाज आते ही उसने 2 कप हार्ड कॉफी लाने के लिए कहा। इसके बाद जेब से मोबाइल निकालकर किसी के नंबर को डायल करने लगा। विक्रम श्याली की पेंटिंग सामने स्टैंड पर रखे खड़ा उसे एकटक निहार रहा था। कुछ देर बाद वो रंग और ब्रश उठा लाया और उस अधूरी पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश करने लगा। वो काफी देर तक आंख बंद किए खड़ा रहा। वो श्याली की पोज को याद करने की कोशिश कर रहा था ताकि इस अधूरी पेंटिंग को पूरी कर सके। श्याली की इस पेंटिंग को वो मास्टरपीस बनाना चाहता था, लेकिन श्याली के बिना अब ये अधूरी रह गई थी। विक्रम ने ब्रश उठाकर पेंटिंग को पूरी करने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसे ये काम मुमकिन नहीं लग रहा था। विक्रम काफी देर मगजमारी करता रहा। वो अधूरी पेंटिंग में एक लाइन भी नहीं खींच सका। उसने झुंझलाकर ब्रश तोड़ दिया। ये बात विक्रम भी समझता था कि सिर्फ याददाश्त के जोर पर किसी पेंटिंग को पूरा करना मुमकिन नहीं है।
मौजूदा हालात में उसके पास कोई चारा भी नहीं था कि कुछ कर सकता। वो श्याली की न्यूड बनाना चाहता था, लेकिन श्याली न्यूड मॉडलिंग के लिए कभी राजी नहीं हुई। विक्रम के खान की पहचान भी न्यूड पेंटिंग को लेकर ही थी। इंग्लैंड में बनाई उसकी पेंटिंग $2 मिलियन में बिक जाना आम बात थी। एक दिन अचानक उसने इंग्लैंड छोड़ दिया और अपने मुल्क आ गया। उसके इस फैसले से इंग्लैंड के उसके फैंस काफी आश्चर्य में थे। एक पेंटर के तौर पर वहां उसका बेहतरीन करियर था, डिमांड थी, बल्कि वो एक बड़ा सेलिब्रिटी था। अपने नाम, काम और जीने के अंदाज से लड़कियां उस पर यूं फिदा हो जाती थी। कदकाठी तो खैर अच्छी थी ही, छरहरा लंबा जिस्म, गोरा रंग, घुंघराले सुनहरे से बाल, लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें। उसकी आवाज में काफी बेस था। जब वो बोलता था तो कोई भी उसको सुनने लगता था। उसी विक्रम के खान की यहां मिट्टी पलीद हो रही थी। श्रेया की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो साजन सलीम को देख देख कर हंसे जा रही थी। उसने पहली बार भरपूर रोशनी में साजन सलीम को देखा था। वाकई उसका पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। सफेद स्पोर्ट्स शूज पर घुटनों तक किसी जानवर की खाल के अलावा उसके बदन पर और कोई कपड़ा नहीं था। ऊपर से बढ़ी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल, यकीनन वो पूरा जंगली ही लग रहा था। ये वजह थी कि कैप्टन किशन का नौकर भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। श्रेया को इस तरह हंसते देखकर साजन सलीम झेंप गया और वो अपने कपड़े उठाकर सीधे वॉशरूम में घुस गया। श्रेया की हंसी अब रुक गई थी और वो सोफे पर बैठ गई। उसके छालों में अब भी दर्द था, बल्कि पूरा जिस्म ही फोड़े की तरह दुख रहा था। उसका खुद का भी हुलिया बिगड़ा हुआ था। ये एक बड़ा सा हॉल था। इसके बीचों बीच बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। एक तरफ डाइनिंग टेबल थी और दूसरी तरफ सोफे पड़े हुए थे। हॉल की छत काफी ऊंची थी। उससे एक झूमर लटक रहा था। दीवारों में एक आतिशदान था। गर्मी का मौसम होने की वजह से आतिशदान खाली पड़ा था। हॉल से अटैच बड़ा सा वॉशरूम था। साजन सलीम गर्म पानी से नहाकर फ्रेश हो गया था। जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने मनोथकान उतार फेंकी हो। श्रेया बैठे बैठे ही सो गई थी। उसने श्रेया को जगाते हुए कहा, तुम भी नहा लो जाकर, बढ़िया गर्म पानी है। श्रेया उसे देखकर फिर हंसने लगी। इस बार भी उसे हंसने की वजह मिल गई थी। साजन सलीम के लिहाज से कपड़े काफी छोटे थे। ऐसा लगता था कुर्ते पजामे में उसे ठूंस दिया गया हो। कितने अजीब लग रहे हो, श्रेया ने हंसते हुए कहा। साजन सलीम ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं एक लंबी छलांग लगाकर सीधे बेड पर आ गया। उसने सर से पैर तक चादर तान ली। ये एक बड़ा सा बेड था। इसे दो डबल बेड जोड़कर बनाया गया था। काफी मुलायम गद्दा पड़ा हुआ था। श्रेया उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। उसके बाद उसने अपने कपड़े उठाकर देखे। घाघरा और चोली थी। उसने खुद पर नाप कर देखा, बहुत बड़ा था। स्टूपिड, श्रेया ने कहा और वॉशरूम की तरफ चली गई। श्रेया जब फ्रेश होकर बाहर निकली तो सलीम के खर्रांटे गूंज रहे थे। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और लाइट बुझा दी। बिस्तर पर लेटते ही उसे भी गहरी नींद आ गई। श्रेया को सोए अभी कुछ देर ही हुई थी कि एक दूसरे दरवाजे से चार लोग कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। वो चारों बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनमें से सबसे मजबूत कदकाठी वाले ने आते ही श्रेया के मुंह पर बड़ी फुर्ती से एक चौड़ा सा टेप लगा दिया। इसके बाद उसके दोनों हाथों को जोड़कर भी टेप लपेट दिया। तुरंत ही उसने उसे अपने कंधे पर उठाया और मुख्य दरवाजे की चिटकनी खोल कर बाहर निकल आया। एक आदमी उसके साथ था। उसने दरवाजे को बंद कर दिया। बाकी दोनों आदमी जिधर से आए थे उधर से ही वापस चले गए। श्रेया की घुटी घुटी सी आवाज निकल रही थी। वो आजाद होने के लिए अपने हाथ पैर भी चला रही थी। वो दोनों श्रेया को लेकर सीढ़ी की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद पीछे छूट गए वो दोनों आदमी भी उनके साथ हो लिए। चारों श्रेया को लेकर बैठक से होते हुए कोठी के बाहर आ गए। अब उनका रुख कोठी के पिछले हिस्से की तरफ था। रात का आखिरी पहर था। बाहर ठंडक थी और हवा तेज चल रही थी। दूर कहीं से किसी उल्लू के चीखने की आवाज आ रही थी। झींगुरों के हारमोनियम की आवाज भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। वो चारों तेज कदमों से श्रेया को लिए हुए कोठी के पिछले वाले हिस्से की तरफ जा रहे थे। कोठी के पिछले हिस्से में भी एक छोटा सा लॉन था। बाहर की तरफ की दीवार में एक गेट भी था। उनमें से एक ने बढ़कर गेट खोल दिया और चारों बाहर आ गए। ये गेट जंगल की तरफ खुलता था। दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ थे। पेड़ों से टकरा कर हवा साए साए कर रही थी। तभी ऐसा लगा जैसे अचानक भूचाल आ गया हो। कौन थे ये चार लोग और कहां ले जा रहे थे वो श्रेया को? सर्जन सलीम ने सुबह श्रेया को न पाकर क्या किया? इंस्पेक्टर सुहराब यहां क्या करने आया था? इन सवालों के जवाब पाने के लिए सुनिए जासूसी उपन्यास शोलागढ़ @34 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।